Om Shanti. So our next session is healing the heart, and we will see that how we could treat our coronary artery disease without any open heart surgery or without angioplasty. So for the same, I request welcome Dr. Satish Gupta sir, and also like to who is the director of IRMM Global Hospital Trauma Center, and also request chairperson Dr. Arkesh A. Shah, Bapu Nagar, Professor at ESS Hospital, to come on the dais. Dr. Bapu Lal Kumar from Udaipur, Professor and Head, Pacific Institute of Medical Science, I request to come on the dais. Dr. Ramesh Bhalal Gondal, Medical Superintendent, Government Hospital, I request them to please come on the dais. I request our respected sister to please welcome our dignitaries. Please welcome our dignitaries, chairpersons. तो हीलिंग द हार्ट इस विषय का विस्तारित रूप लेकर एक बहुत अनुभवी व्यक्ति आज हमारे समक्ष है, डॉक्टर राज योगी सतीश गुप्ता भाई जी. आप कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू के वरिष्ठ सलाहकार है. आपने 1980 में एमबीबीएस एमडी की डिग्री प्राप्त की और कई ऊंचे फेलोशिप्स भी आपने प्राप्त किए हैं. आप हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष है. आपको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान प्राप्त करने हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है. आपके प्रति कहने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. रिक्वेस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता सर टू प्रोसीड द सेशन. थैंक यू. ओम शांति.
ओम शांति. आप सभी जहां भी हैं बैठ जाएं. We'll have 1 minute of silence. सभी एक मिनट मेडिटेशन करेंगे. सभी सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट होके. व्हाइट लाइट ही रखें, लाल लाइट की आवश्यकता नहीं. व्हाइट लाइट ही रखेंगे. सीधे होके बैठ जाइए. एक मिनट मेडिटेशन. ओम शांति. आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे, हाउ कैन वी हील अवर हार्ट, नॉट ओनली हार्ट बट ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, ईच एंड एवरी थॉट ऑफ अवर बॉडी, ईच एंड एवरी इमोशन ऑफ अवर बॉडी, ऑफ अवर बीइंग, ह्यूमन बीइंग, राइट. सो हाउ टू हील, हीलिंग. जैसे हमने आपसे बात की अभी कि हम एक मिनट साइलेंस में बैठें, योग करें या मेडिटेशन करें. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप सभी जानते हैं योग या मेडिटेशन, समझ गए कल से आप आए हैं. व्हाट इज मेडिटेशन और व्हाट इज योग? यस, एनीवन? क्या करें? कनेक्शन विद द थॉट, विद द गॉड, कनेक्शन विद द परमात्मा. देखिए योग मीन्स कनेक्शन, ऑल राइट, है ना. योग का मतलब ही है कनेक्शन, योग और मेडिटेशन. मेडिटेशन वर्ड हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फोकस, टू कंसेंट्रेट, एंड ऑल्सो हैज कम फ्रॉम मेडरी. मेडरी मीन्स टू हील. तो जब हम मेडिटेशन की बात करते, योग मीन्स कनेक्शन. कनेक्शन विद वॉट? कनेक्शन विद वॉट? कनेक्शन विद द ट्रूथ. सत्य से जुड़ना ही मेडिटेशन है. बिकॉज सेंट्रल टू हीलिंग इज योग, मेडिटेशन, राइट. इट इज हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, हीलिंग थ्रू योग, राजयोग मेडिटेशन. सो आई शुड क्लियर दिस इन एडवांस एंड आई विल गिव यू वन और टू एग्जाम्पल्स ऑल्सो बिफोर आई गो ऑन टू द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिसर्च एंड हाउ वी कैन हील इट. So yoga means connection, connection with the truth. Truth, that the two qualifications for truth. One is, truth is eternal, beyond birth and death. Second is, truth is unchangeable, aparivartanshil hai. Satya sada hai, avinashi hai, saswat hai, shashwat hai, uska janam aur maran nahi hota hai. Sada hi hai. To aapka satya kya hai? Mera satya kya hai? Ek insaan ka satya kya hai? Yes? Anyone? बॉडी, हम बचपन से अपने आप को शरीर देखते आए, अपने माता पिता को शरीर के रूप में देखा, संबंधों को शरीर के रूप में देखा, isn't it? और हम अपने आप को देह ही समझते आए हैं. तो बॉडी इज ट्रूथ. यस, बॉडी इज ट्रूथ. बॉडी इज नॉट, इज चेंजिंग डेली. एंड देहांत, बॉडी डाइज, राइट. बॉडी पांचवें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और फिर बच्चा लाइव होता है एंड देन वन डे इट लीव्स द बॉडी, सो इट डाइज. सो इट इज नॉट ट्रूथ, इट इज नॉट एटर्नल, इट इज नॉट अनचेंजेबल, इट इज चेंजिंग डेली. सो इट इज, बट वी हैव बीन कनेक्टिंग विद द बॉडी थ्रू आउट अवर लाइव्स फ्रॉम द बर्थ, राइट. सो सेकेंड थिंग इज, वी आर कनेक्टिंग विद द रोल्स. I am a male, I am a female, I am a doctor, I am a businessman, whatever roles we play. I am a mother, I am a father, I am a wife, I am a husband, right? Whatever roles we are playing, they are eternal, they are beyond birth and death, they are not beyond birth and death, right? They are changing daily. In one day we may change so many roles. So what is meditation? What is truth? What is my truth? You must have heard the meaning of Om. What is the meaning of Om? You must be now here, you must be saying Om Shanti, Om Shanti. What is the meaning of Om? Om is a Sanskrit word derived from two words, Aham plus Mam. Aham Atma, Mam Shariram. Right? Main ek Atma hoon, ye mera Sharir hai. Human being. Human plus being. Human word is humus. Human word has come from humus, Latin word, which means soil. And being is life force. Life force means soul. So who am I? Body is changing. Roles are changing. Materials are changing. But soul is unchangeable. It is beyond birth and death. It doesn't change. So connection with my truth. I am a being. I am a soul. चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्वासों श्वास इससे जुड़े रहना, यही राजयोग मेडिटेशन. यही राजयोग मेडिटेशन का पहला और आखिरी चैप्टर है, राइट. स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ, एक होता है स्व, एक होता है शब. ये स्व अंदर वाला मैं है जिसे आत्मा कहते हैं और ये शब ये बॉडी है. व्हेन दिस स्व एंटर्स दिस बॉडी देन इट बिकम्स लाइव, राइट. सो स्व मीन्स आत्मा, अस्थ मीन्स स्थित. तो स्वस्थ मीन्स आत्मिक स्थिति में स्थित. स्वस्थ मीन्स सोल कॉन्शियस, राइट. यस, सो वी वॉन्ट टू बी हेल्दी, वी वॉन्ट टू मेक अवर पेशेंट्स हेल्दी. सो वी हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट फर्स्ट इन माई सेल्फ एंड देन इन दिस. नाउ आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस first of healing. I was in Delhi, in one of the hospitals in Delhi, heart hospitals. I shifted to Mount Abu in April 95. We had planned one research program on this heart disease with DRDO, Dr. APJ Abdul Kalam, and with three cardiac centers, one in Delhi, GB Panth Hospital, and second in Ahmedabad, BJ Medical College and UN Mehta Institute of Cardiology, and Grant Medical College, Mumbai, and JJ Group of Hospitals with tertiary cardiac centers. We were supposed to have patients from three cardiac centers. They were supposed to refer us patients, angiography documented CAD patients, and we were supposed to start the research. We have Dr. Kalam, we had submitted the project, we had planned a program in collaboration with Dr. APJ, I met Dr. APJ Abdul Kalam on 9th of March 95, and because I had given a talk in one of the IMA meetings in Delhi on stress and heart disease and how meditation can help us. I got introduced to Brahma Kumaris in 1986 when I was at AIIMS, Delhi, All Institute of Medical Sciences. And then, after 1.5 years of coming here in Mount Abu, the program was submitted to Ministry of Health for clearance and for sponsorship. But we were waiting for that. In the meantime, I was working here in the hospital, Mount Abu Global Hospital. And I was doing fine. I was a good, I used to play badminton, cricket, and lawn tennis. I had no symptoms whatsoever. Suddenly, November 96, I developed chest pain. Got ECG done. And it was all HAOS, ST elevation and lots of changes. I don't have my ECG here, but it had a lot of problem. I had perspiration, chest pain, and from the day one, I started having arrhythmias. I could not sleep in the night. We went to Ahmedabad because here we had no facility at that time, at that point of time in Mount Abu. So got my echo done and discussed with the other fellow cardiologists, and they were not very clear what it is. Then in Mumbai, my angiogram was done. Then angiogram was absolutely fine. There were no blocks. Two times echo was done there also, but they could not find out. My problem was that during the night, I could not sleep. My chest, left side of chest was, it used to remain heavy. My left limb, upper limb used to remain numb all the time. And I used to get lots of arrhythmias during the night. And I could not sleep the whole night. In between, I get arrhythmia, I used to get, frequent PPCs. And sometimes the night, my hand should be here, used to be here, and oxygen was in my nose in the night, and sitting, and pulse will disappear, and it will again come back, and I'll get a lot of giddiness. You must be knowing what happens to a patient with arrhythmias. February 97, there was a conference in Udaipur on echocardiography. I'm a founder member of echocardiography, Indian Academy of Echocardiography, and there I was invited, so I went there. One of my friends from US, Mayo Clinic, he used to be there most of the conferences. And he saw me. He said, "Dr. Gupta, what has happened to you? You're not looking well." Because I was not sleeping almost for 3 months properly during night, because I had to keep sitting. I could not lie down. If I lie down, the problem used to increase during night. And then he said, I told him what is happening. He said, "Let me see your heart." He was a world authority on hypertrophic cardiomyopathy. So he said, "Let me see your heart." And he did my echo in the conference, because echo we get top of the line machines, echocardiography machines. And he said, "Dr. Gupta, you are suffering from hypertrophic obstructive cardiomyopathy." My, intraventricular septum was 21 millimeter. My ejection fraction was 90%. Normally 60%, right? 60-65%. Mine was 90%. My heart was, used to do like this. Not like this, but used to like this. Because every beat was painful for me. And then, and I used to get arrhythmias, and my gradient, mid-cavity gradient was 96. And with Valsalva, it is going up to almost 156. He said, that is what happens to you in during night. The gradient increases during night. That is why you are not able to sleep. You are not able to, and you keep on getting arrhythmias. And you have to come to US, and we'll operate on you, and we'll do an alcoholic septal ablation and put a AICD, artificial inverter, cardioid inverter. And I came back to Mount Abu after the conference, and shared with Dadiji, chief of Brahma Kumaris. This is Dadi Prakash Maniji. That time she was the chief, 97. I told her this. Dadi said, no problem. I'll tell the director of Brahma Kumaris in US, and you go to US, and we'll organize everything, and you can be operated. But I said, Dadi, I came here to do a research for heart patients, so that they will not need the surgery. I had not come here to do research or this operation for myself. And then Dadi Gulzar, who was the trans messenger for Shiv Baba, she told her that you get the message from God, what should be done. Next day, the Gulzar Dadi, she brought a message that this problem has come to ye jo problem aapke Dr. Gupta ke paas aaye unko anubhav ki authority banane ke liye aaye. Inko rajyog ka koi anubhav nahi hai. Anubhav means ki rajyog se kaise bimari theek ho sakti hai, inko apna anubhav nahi hai. Suna hai rajyog karte hain, par usse bimari kaise, inko research project to bana ke aaye hain, doctor research project to bana ke aaye hain research karne ke liye. तो इनको अपना अनुभव नहीं है, इसलिए बीमारी उनको आई है. तो राजयोग से उनको बीमारी ठीक करने का अनुभव करना है. और बाबा ने यह मैसेज दिया कि आप मैसेज समझते हैं ना, ट्रांस मैसेज समझ, कुछ आप में से कुछ लोग समझते होंगे, बाद में क्लियर हो जाएगा. तो ये कहा कि नहीं, एक महीना खूब योग करे डॉक्टर, तो एक महीने के बाद मुझे रिजल्ट सुनाए. खूब योग का अभ्यास करे. ये फरवरी का महीना था, और मैंने खूब एक महीना मैंने छुट्टी ले ली हॉस्पिटल से, और दिन रात अभ्यास करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ. मैंने 8-8, 9-9 घंटा भी बैठ के कमेंट्री के साथ योग करता था, और मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ. ज्यादा फायदा मैं कहूंगा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं सेम नाइट में पेन होती थी, सेम वही नमनेस, वही प्रीकॉर्डियल हैवीनेस, और एरिथमियास होते थे और प्रॉब्लम होती थी. एक महीना मैंने किया, फिर एक महीने के बाद मैं फिर गया दादी के पास, बड़ी दादी जी के पास गया, तो दादी को बताया, दादी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ है. फिर दादी ने कहा, गुलजार दादी जी को कहा कि बाबा को बताओ एक महीना, तो इन्होंने चार्ट भी लेके गया, मैंने घंटे घंटे का चार्ट बनाया था याद का, मैं घंटे में कितने मिनट याद कर, टोटल कितने मिनट हुए एक घंटे में, एक दिन, और अभ्यास मैंने पूरी दिनचर्या का सब कुछ बनाया हुआ था. दादी को दिखाया भी, तो फिर बाबा को मैसेज लेके गए. फिर बाबा ने दोबारा कहा कि ये डॉक्टर जो मेडिटेशन करते हैं वो राइट टेक्निक नहीं है. तो मैंने कहा, फिर दादी मुझे अपने कमरे में ले गए अगले दिन. फिर दादी ने मुझे वहां समझाया कि योग की राइट विधि क्या है. अगर हमें हील करना है अपने आप को, राइट विधि क्या है, सार रूप में ज्ञान क्या है. ज्ञान ना समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ. ज्ञान जो आपको कोर्स कराया गया ना अभी, आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा परमात्मा से क्या संबंध है हमारा, ड्रामा के बारे में कल आपको बताया जाएगा, संसार की सिस्टर की ड्रामा क्या है, कर्मा फिलोसफी क्या है, ये बताया जाएगा. तो मेरे को जब ये बताया गया, तो मेरे को दादी ने कमरे में लेके गई, दादी जी थे और मैं था बस. दादी ने मुझे सोफे बिठा लिया, और दादी मुझे बता रही थी, बाबा ने कहा कि आपकी विधि ठीक नहीं है. बाबा ने क्या कहा, आप क्या करते हो बैठ के कमेंट्री से योग करते हो, अपने आप को सामने ऐसे इस तरह से एक कमेंट्री के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश करते हो, गलत है. आपको क्या करना, जो बाबा ने बताया ना आपको, परमात्मा जो मुरली में सुनाते हैं, मुरली समझते हैं आप, जो परमात्मा के महावाक्य है ना, ये सुबह सुबह हम सेंटर पे सुनते हैं. सो जैसे आज की मुरली ये है, ये परमात्मा गॉडली वर्शन है ना, इसको हम मुरली कहते हैं। परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये महावाक्य उच्चारण करते हैं, इसको मुरली कहते हैं। तो इसको रिवाइज करें, एक एक महावाक्य परमात्मा के महावाक्य हैं, ये सत्य है, परमात्मा परम सत्य है, ये उसकी मुरली सत्य है, ये भी परम सत्य है। एक एक महावाक्य को स्पेशली, जैसे परमात्मा का सार रूप में ज्ञान क्या है, ABCD, ए फॉर आत्मा, पी फॉर परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन अर्थात संबंध, और डी फॉर ड्रामा, या ABCD कहो या APCD कहो, ये चारों चीजों को रिवाइज करें अंदर अंदर। ये चारों चीजों को अंदर अंदर रिवाइज करना, मैं कौन हूं, मैं ये देह नहीं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु, चलते बढ़ते अंदर से महसूस, अंदर से इसको रिवाइज करें, मैं इसकी संतान नहीं, मैं उस परमात्मा की संतान, मैं आत्मा उसकी संतान, और परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, सामने देख रहे हैं ब्रह्मा का चित्र, इसके द्वारा मुझ आत्मा को क्या कर रहे हैं, सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। आतिन गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, और डी फॉर ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, और आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट अभी तक उसने किया है, अभी भी कर रही, भविष्य में भी करती रहेगी। कर्म सत्य है, कर्म का विनाश नहीं होता है, और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर है और प्रिंसिपल एक्टर है और सुप्रीम जस्टिस भी है। उसने हर आत्मा को अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, मतलब अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है इस ड्रामा में, और अभी जो हो रहा है वो भी एक्यूरेट हो रहा है, और भविष्य में भी जो होगा एक्यूरेट होगा, राइट? ये परमात्मा था। और कुछ भी हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी तक जो कुछ हुआ क्या हमारे साथ ठीक हुआ है? आप क्या समझते हैं हमारी प्रॉब्लम कहां है? हम सब समझते हैं मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है, नहीं, उसने दुख दिया, उसने इंसल्ट किया, उसने धोखा दिया, मेरे को ऐसा हुआ बचपन में, ऐसा हुआ, मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड किससे भरा हुआ है, पास साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से भरा हुआ, नहीं भरा हुआ, और उस चश्मे से ही जो हमने पास्ट में अनुभव किया है, भावनाओं को चोट पहुंची है, इमोशंस को चोट पहुंची है, विचारों को चोट पहुंची है, उसी चश्मे से आज वर्तमान को देख रहे हैं, उसी चश्मे से हम वर्तमान में जो हमारे साथी हैं घर में या ऑफिस में वर्किंग प्लेस पर, वहां उनको उस चश्मे से देखते हैं, तो हमारी थॉट स्पीड कितनी बढ़ जाती है। अगर मैं कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है, 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपया उधार लिया, जैसे आपका फ्रेंड था उसको वापस नहीं कर पाए, 100 साल के बाद वो व्यक्ति आपका दोस्त आपका क्या बनेगा आकर के अगले जन्म में? कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये भी कहते ना, हम 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, फिर भी क्या करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, हिसाब किताब नहीं छोड़ेंगे, नहीं ऐसा। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या है? हिसाब तो 10 रुपया है, 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है? ब्याज हो जाता है, मैंने इसे को हिसाब लगा के देखा था, 4,18,35,040 रुपया हो जाता है 10 रुपये का ब्याज। तो 10 रुपया जो अपने दिन उससे लिया था ना, अब वो आपका क्या बन के आएगा? या तो बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, या तो वाइफ बन के आएगा, हस्बैंड बन के आएगा, या माता कुछ सास बन के आएगा, कुछ ना कुछ बन के तो आएगा, राइट? और उसको आपको इतना देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा, साथ में हिसाब है 10 रुपया, ब्याज किताब कितना है इतना। अगर किसी की आपने 2 बार इंसल्ट किया 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? 2 बार इंसल्ट का ब्याज कितना होगा? कितना? कम से कम 20,000 बार तो होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो आप देखते हो ना, आपको कोई इंसल्ट किया जा रहा है बार बार, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको अब्यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। हम क्या समझते हैं, ये मुझे ऐसा क्यों करता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये मुझे ऐसा क्यों करती है, मुझे ऐसा क्यों करती है, राइट? एंड दैट इज वॉट इज दी प्रॉब्लम, दैट इज वॉट लीड्स टू थॉट ट्रैफिक बहुत फास्ट हो जाता है, बिकॉज 90% ऑफ थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट, पास्ट साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, वर्तमान से और भविष्य फ्यूचर इनसिक्योरिटीज, और 10% थॉट्स से कहां से आ रहे हैं, वर्तमान से आ रहे हैं। इसलिए कहा गया डिजीज, डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, ईज माना शांति, मन की शांति खत्म हुई, फिर शरीर के अंदर सेल्स के अंदर शांति खत्म होती है, बीमारी पैदा होती है। व्हाट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी? इज अ रिजेंटमेंट, पास्ट रिजेंटमेंट, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ट्यूमर क्यों होता है? रिजेंटमेंट्स, कौन से अंग में होगा वो फिर अलग, अब हम आगे जाएंगे तो पता लग जाएगा, राइट। तो ये हमें ये समझना है। तो दादी ने ये बताया, रिवाइज दिस नॉलेज, कि ड्रामा में अभी तक जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिको, उस परम सत्य से कंबाइंड होकर हर काम करो, ये रिवाइज बार बार करो और रियलाइज, सच्चे दिल से महसूस करो, इस बात को सच्चे दिल से महसूस करो कि मैं कौन हूं, चलते फिरते उठते बैठते, आधा घंटा सुबह शाम नहीं, 20 मिनट सुबह शाम नहीं, निरंतर निरंतर। इफ यू वांट टू फिनिश द डिजीज, दिस ईज लॉस ऑफ ईज, एंड यू वांट टू हैव ईज, पीस, व्हाट इज पीस, ये है पीस। हार्ट मीन्स लव, लव मीन्स व्हाट, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। भगवान का प्यार कैसा है, क्या कहते हैं भगवान के प्यार को, तू प्यार का सागर है। कैसा प्यार है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ, दिल से, सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के स्वीकार करो और उसकी पालना करो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वर्किंग प्लेस पे हो। ऐसा प्यार हर एक के लिए, ये ऐसा प्यार नहीं तो हार्ट की बीमारी होती है, तब ब्लॉक होते हैं। कंडीशनल लव, जजमेंटल लव, वी वॉन्ट द थिंग्स द वे आई वॉन्ट, द आई एम द बॉस, तो बॉस को ही हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, नहीं होती। बड़ा सुंदर दादी जी ने मुझे एग्जांपल दिया था एक बार, बड़ी दादी जी, रोज दादी ने कहा था बड़ी दादी जी ने कि मुझे 5 मिनट मुरली के बाद आपको मेरे पास बैठ के जाना है। दादी अकेले होते कोई ना कोई बात कहती थी, या अपने कर्म से सिखाती थी, या कई बार कुछ पूछती थी। दादी ने एक बार कहा, कुत्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं, दादी मींस हेड द डिपार्टमेंट जो होते हैं ना उनको इंचार्ज कहते हैं। किसे कहते हैं इंचार्ज, किसे कहते हैं? तो जैसे यूजुअली आप कहते हैं, मैंने भी आंसर दिया। उसने कहा, दादी ने कहा नहीं, इंचार्ज का मतलब ये नहीं, इंचार्ज का मतलब इन चार्ज, जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, अपने सत्य में टिके, परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होकर के अपने आप को पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, आत्मा के साथ एनर्जी है उससे भरपूर करता रहे, और जो भी उसके साथ हैं घर में या बाहर उनको क्या करता रहे, शांति, प्रेम, सुख, आनंद किससे उनकी पालना करता रहे, उसको कहते हैं इंचार्ज। समझ में आए? अगर आंख दिखाते हो, गुस्सा करते हो, उसको क्या कहते हैं? इंचार्ज नहीं कहते, उसको आउट चार्ज कहते हैं। यस। तो और मुरली जो है परमात्मा के महावाक्य, मुरली को बहुत ध्यान से रिवाइज करो, सच्चे दिल से महावाक्य को महसूस करो कि परमात्मा ने ये मेरे लिए डायरेक्शन दी है। इसको रिवाइज मनन करो, मनी मन में रिवाइज करो, चिंतन करो, इसको मुझे इसमें क्या मेरे लिए स्पेशल बाबा ने बताया, इसकी गहराई क्या है, इसके रहस्य क्या है, राज क्या है इसके पीछे, और फिर उसका मंथन करो, उसको बहुत सूक्ष्मता से, उसका महीनता से उसको मंथन करो, उसमें से मक्खन मक्खन निकलेगा, मक्खन माना पवित्रता, उस मुरली के अंदर से निकलेगी महावाक्य से, शांति आपके अंदर बना, वर्तमान में टिकना सीख जाओ, प्योरिटी माना, प्योरिटी माना व्हाट, प्योरिटी माना आप अपने सत्य में टिके, सामने वाला चाहे पत्नी हो या पति हो या कोई भी हो, बच्चा हो, उसको सत्य रूप से उसको रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, उसको भी आत्मा के रूप में देखेंगे, अपने बेटे के रूप में, बेटी के रूप में नहीं, पत्नी के रूप में नहीं, ये भी हम आत्मा है, ये भी मेरा एक उस बाप के हम बच्चे आपस में आत्मा के रूप में भाई भाई हैं, मैं भी शांत स्वरूप, ये भी शांत स्वरूप है, ये भी प्रेम, भले गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा रहा, उस पर हेम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये आपको, इसको बोलते पवित्रता। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, एंड हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट। सारे विश्व के जब सब आत्माओं को आप स्वीकार कर लेते हो, उनके बराबर पालना करते हो बिना पार्शियलिटी के, इसको कहते हैं, तब आप उस परमात्मा से मिल सकते हो, उसके साथ आप कम्युनियन फील कर सकते हो। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसेस जॉय। किसी एक भी आत्मा से आपका घर्षण है, फ्रिक्शन है, तो आपको परमात्मा के गोद की अनुभूति नहीं हो सकती है। यू कैनॉट हैव कम्युनियन विद द गॉड। तो इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। और फिर व्हेन यू गो, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, और संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट आ गई, एंड देन यू गो बियॉन्ड डिजायर्स, एंड व्हेन यू फील submerged in the love of God, immersed in the love, That is going beyond. Anand means bandhan. Andh means mukt. Bandhan mukt sthiti. To usse anand kehte. Aur us anand se kya hota hai? Aur jab aisa anand, atyendra sung anand kan anubhuti karte hai, to aapko, aapki third eye of wisdom khul jati hai. Satya ko parakhne shakti jagrat ho jati hai. Yathart nirnay aap kar sakte ho. Dridhata ke saath nirnay. Yes, this is what I want to do. I will do this. Bina dridhata ke safalta nahi milti hai. Aur tab aapka buddhi, दिव्य बुद्धि आपको मिल जाती है और दिव्य बुद्धि रूपी एक लिफ्ट बन जाती है और आपका मन शुद्ध हो जाता है. ये लाइफ का मन मुद्दी यहां मन सारे शरीर में फैल लाइफ की बॉडी बन जाती है, सूक्ष्म शरीर बन जाता है. आपका टीम मन माना टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज वो पॉजिटिव हो जाती है और लाइफ की बॉडी मन सारे शरीर में फैला हुआ लाइफ का शरीर पैदा हो जाता है और संस्कार आपकी ड्रेस बन जाती है. ये आप सुबह सुबह अभी जो 4 बजे उठ रहे हो ये आपकी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है. मुरली सुनते हो ये आपकी आदत बन जाती है. बार बार मुरली को रिवाइज करना रियलाइज करना ये आपकी आदत बन जाती है. अटेंशन और सोने के पहले वेंटिलेशन. हार्ट की बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेंटिलेशन. कहा जाता है ना अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से. इंसानों से अपने दिल को नहीं खोल पाते, भगवान को तो लेटर लिख के खोल सकते हो ना. सुबह से लेकर रात तक आपके मन में जो भी इंटेंशन है, जो भी परिवार में शरीर में कुछ हो रहा है उसके बारे में, परिवार में कुछ चल रहा है या प्रोफेशन में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, तो चारों एरियाज में अपनी जो भी टेंशन वेंटिलेट कर लो, लिख दो, साइन कर दो, भगवान को 000 पे फैक्स कर दो. भगवान का हॉटलाइन फैक्स नंबर है कौन सा? 000. मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारे में जो भी था मल्टीप्लाइड बाय 0. आंसर क्या है? 0. लेटर को ट्रांसफर कर दो बाबा को और फाड़ के डस्टबिन डाल दो. एंड इफ यू वॉन्ट टू ओपन योर ब्लॉक्स दिस इज द मेथड. तो अमृत वेला 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा मेडिटेशन, चार्ज योर बैटरी, देन हैव 7 से 8 मुरली परमात्मा महावाक्य. सुनो ये मैं बता रहा हूं हाउ टू हील द हार्ट, जैसे मैंने अपने आप को हील किया. और फिर हील करने के लिए फिर ये क्या, और फिर सारा दिन अटेंशन. ये नहीं सुबह शाम नहीं, सारा दिन अटेंशन. एबीसीडी एपीसीडी पे टेंशन. बाबा ने आज मुरली में क्या कहा उस पर अटेंशन, दुनिया वाले क्या कहते उस पर नहीं. आप कहेंगे फिर हम काम क्या कैसे करेंगे, आपकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाएगी. आपको वही थॉट आएगा जो करना है, आपका डायग्नोसिस वही बुद्धि में आएगा जो आपको एक्यूरेट पेशेंट को बीमारी है. और इलाज आपका कैसे होगा, पेशेंट को हाथ लगाओगे वो ठीक होने लगेगा, उसको अच्छा फील लगेगा, डॉक्टर साहब आ गए बस ठीक हो गया मैं, ऐसी फीलिंग आएगी. आपका हाथ क्या बन जाएगा, आपका हाथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन बन जाएगा, हाथ ही आपका हीलिंग मशीन बन जाएगा. प्रैक्टिकली ऐसा होता है. हमारे दादी जी ऐसे थे, दादी प्रकाशमणि, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे. मैजिक नहीं है इसमें, मेडिटेशन एज मेडिसिन. वो 7 एनर्जी जिससे आत्मा है, आत्मा है तो शरीर में तो सब कुछ चल रहा है, 7 एनर्जी से चल रहा है. आत्मा निकल के कुछ भी चलता नहीं, इसलिए कहा गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर What you are. तो मैंने इस टेक्निक से करना शुरू किया. मैंने रोज लेटर लिखना शुरू किया. दादी ने जैसे बाबा से मैसेज आया था रिवाइज एंड रियलाइज. और मुझे ये याद है कि मैं तीसरे दिन मुझे नींद आई. 4 महीने के बाद नींद आई मुझे. आई कुड स्लीप द होल नाइट. और धीरे धीरे मैं समझो महीने भर में मैं काफी मुझे हार्ट हल्का हो गया. मेरी जो प्रीकॉर्डियम हैवी रहती थी, हैंड नम रहता था, ठीक हो गया. और मुझे बिल्कुल ठीक होता चला गया. और फिर क्या हुआ कि मेरे को ये प्रॉब्लम मतलब जो है, और मेरी फिर सितंबर में फिर कॉन्फ्रेंस थी तो सितंबर में गया. वहीं पे डॉक्टर दिल्ली में थे इस बार, और मैं वहां गया तो उन्होंने दोबारा मेरा वही डॉक्टर यूएस वाले हैं, स्मायो वाले, उनका डॉक्टर थे. यू लुकिंग वेरी ब्राइट, आप तो यूएस में भी नहीं आए मेरे पास, पर यू लुकिंग ब्राइट, लेट मी सी योर हार्ट. एंड डिड माय एको. मेरा जो है वो मायोकार्डियम जो था, जो आईवीएस जो था मेरा 21 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर हो गया. और जो पोस्टर वाल भी ठीक हो गई. और ग्रेडियंट था मेरा 12 रह गया, सिर्फ 96 से 12 हो गया. और मेरे को उसने कहा था कि डॉक्टर गुप्ता यू आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है अपनी वाइफ के नाम कर दो, कुछ भी जो भी है आप कर दो, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो. और कितने साल हो गए इस बात को? 97, अभी कितना है? 23. आई एम अलाइव और नॉट, इजंट इट? और उसके बाद 97 में जब ये मैं आया सितंबर में, वो कॉन्फ्रेंस करके आया और मेरा हार्ट ठीक हो गया था. हार्ट की इंजेक्शन फ्रेक्शन 65% हो गई थी. और उसके बाद फिर अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ, मैं घर में आया, लेटर आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और हमारी मीटिंग थी और डॉक्टर वहां मिनिस्ट्री में मीटिंग यही बात हुई कि आपका प्रोजेक्ट हमें पास करना चाहते हैं। एंड डॉक्टर गुप्ता, हमने कहा था हम हठ योग नहीं करेंगे, हमने कहा था नेचुरोपैथ हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ राजयोग मेडिटेशन कराएंगे। उन्होंने कहा, एक लास्ट में कहा कि एक बात कही कि डॉक्टर गुप्ता सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शवासन जरूर करा देना पेशेंट्स को। मेरे साथ दो साइंटिस्ट और थे जो मेरे साथ फेलो साइंटिस्ट थे, एक डीआरडीओ से थे, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, हम तीन गए थे वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो डायरेक्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा शवासन, शवासन तो अपोजिट है, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, हम राजयोग में कहते हैं आत्मा है, आत्मा से एनर्जी जा रही, सारा लाइव हो रहा है। तो मैंने कहा सर हम शवासन नहीं कराएंगे, इंग्लिश में बोला मैंने, गुप्ता यू आर वेरी स्टबर्न, आप कुछ मानते ही नहीं हमारी, हम आपको इतना रिक्वेस्ट ढाई साल से कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट April 1995 में हमने सबमिट की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, आप हमारी एक भी एक बात भी नहीं मानते। मैंने कहा आई एम नॉट कंप्लीटेड माई सेंटेंस, हमने कहा उनको हम शवासन नहीं कराएंगे, हम शिवासन कराएंगे। कहते शिवासन क्या होता है? तो मैंने कहा हम सोल कॉन्शियस होकर उस परमात्मा शिव से कंबाइन रहेंगे और उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर ये February 1998 में प्रोग्राम शुरू हुआ और मुझे याद है 27 दिसंबर को लॉन्च हुआ प्रोग्राम, उसमें दादियां थी, हमारी तीनों दादियां थी और हमारे बड़े भाई बहन विदेश के भी थे, लॉन्च हुआ और उसमें डॉक्टर हेल्थ मिनिस्ट्री से भी टीम आई हुई थी। 28 दिसंबर को दादी ने मुझे बुलाया सुबह मुरली के बाद और दादी ने कहा डॉक्टर गुप्ता हार्ट की बीमारी होती किनको है? मैंने कहा दादी जल्दीबाजी करते हैं उनको हार्ट की बीमारी होती है, तीन गुना ज्यादा होती है, चिंता करते दो गुना अधिक होती है, गुस्सा करते तीन गुना अधिक, साढ़े तीन गुना अधिक होती है, उदास होते पांच गुना अधिक होती है, जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते उनको हार्ट अटैक उनकी ज्यादा। मेरा हार्ट ठीक हो गया था तब तक। तो मैंने कहा दादी ने कहा अच्छा आप करते हो जल्दीबाजी? मैंने दादी कभी कभी तो हो जाती है। अच्छा कभी गुस्सा आता है क्या? बाहर तो नहीं आता, कभी अंदर अंदर तो आता है। इस तरह से दादी ने मुझे कहा अच्छा फिर आप क्या करोगे, आपको तो कुछ आपको खुद ही तकलीफ है, आप क्या ठीक करोगे लोगों को? मैंने कहा दादी अच्छा फिर कहती खाने पीने का क्या परहेज कराते हो? मैं दादी जो पराठा पकौड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं उनको हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, फ्राइड फूड खाते हैं ना, जंक फूड खाते हैं, आप खाते हो कभी? मैंने दादी गुरुवार का भोग तो होता है ना अपने यहाँ पर, तो वो तो खाते हैं, आप टोली देते हैं तो प्रसाद देते हो वो तो खाते हैं। अच्छा आप खाएंगे तो फिर वो लोग भी खाएंगे ना जिनको आप कहेंगे नहीं खाना है? मैंने दादी मुझे तो डायबिटीज नहीं है, हार्ट की बीमारी तो ठीक हो गई, अब तो मेरे को प्रॉब्लम कोई नहीं, मेरी आर्टरीज नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं तो खा सकता हूँ, उनको बताना है, आई विल टेल देम एवरीथिंग। नहीं नहीं उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो उस दिन 28 दिसंबर 1997 और आज का दिन, तब से दादी ने मुझे क्या कर दिया, मीठा खाना बंद, फ्राइड खाना बंद, तला खाना बंद, तब से मैंने छोड़ दिया। और डेली एक्सरसाइज करना, समय पर सोना, समय पर उठना, दादी ने मुझे कहा पहला खुद करो, कुछ भी करते हो पहले खुद करो, जब आपके जीवन में थोड़ी आ जाए तब आप दूसरों को बताना, अदरवाइज दिस प्रोग्राम विल बी ए फेलियर। पर हम अपने हार्ट पेशेंट्स को क्या कहते हैं? हार्ट पेशेंट नहीं कहते, क्या कहते हैं? दिल वाले कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ये एक अनुभव मेरा था और दूसरा, मैं जो टाइम तो हो गया, मैं फिर भी एक बात और बता देता हूं आपको। 2005 में मुझे हार्ट में यहां पर एक श्वानोमा हो गया था, मैं हीलिंग द हार्ट बता रहा हूं, खाली हार्ट नहीं और भी चीज कैसे हील होती है, मेरी श्वानोमा हो गया था मेरे को राइट सुपीरियर रेक्टस पे, आंख मेरी बड़ी हो गई, 2005 में ऑपरेशन हुआ, रिकरेंस हो गई, फिर 2008 में ऑपरेशन हुआ, फिर जनवरी में, जनवरी 24 को हुआ और मेरा ट्यूमर निकाल दिया गया, पूरी नर्व ही निकाल देगी, आधा सिर एनेस्थेटिक है मेरा, पूरी सुपरा ऑर्बिटल नर्व निकाल देगी। तो मार्च में मुझे अपने आप एक रात को 11 बजे मुझे बहुत सीवियर पेन शुरू हो गई, रात को 11 बजे, पता नहीं ट्राइजेमिनल ड्यूरेलजी होता है, सीवियर लैंसिनेटिक पेन शुरू हो गई 11 बजे रात को। अब मेरे पास टैग्रेटोल तो थी, मुझे पता था मुझे कभी भी हो सकता है, मैं रात को लूं नहीं लूं, पर मैंने कहा नहीं बाबा से सुबह पूछेंगे अमृत वेला। होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप, बैठा रहा, पेन बहुत सीवियर थी। सुबह 2 बजे मैं मेडिटेशन शुरू किया और मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये मैं कैसे से करूं? तो बाबा ने कहा, बाबा मतलब शिव बाबा ने, हम बात की, यू कैन टॉक टू गॉड, सुबह सुबह अमृत वेले आप बात कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1, अगर आपकी 2 हो जाए तो यू कैन इंटरेक्ट विद हिम विद थॉट्स, दैट इज यू नो कैन टॉक विद। तो बाबा ने इशारा दिया, बच्चे अगर तुम शांत रहोगे ना, कुछ भी हो जाए शांत रहोगे ना, आपको पेन नहीं होगा, थोड़ा शांत हो जाओगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। और यही होता है 2008 से लेकर के और अब तक, ये मेरे को सेफ्टी वाल मिल गया कि कभी भी अशांत नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लानी है, और तब से मैंने एक भी गोली नहीं खाई है। 97 में जो डिसलिपिडिया में था बहुत ज्यादा, मेरा कोलेस्ट्रॉल 250-260 रहता, ट्राइग्लिसराइड 600-700 रहता था, मुझे याद है लास्ट जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी 692 था उसे मेरा ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल मेरा 27-28 रहता था। अब मुझे जब ये शुरू हुआ पता, बाबा ने विधि बता दी राजयोग करने की और अपना डाइट चेंज सब किया, तो मैंने आज मेरा कोलेस्ट्रॉल, मैंने गोली नहीं खाई आज तक, कोई स्टेटिन नहीं खाया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हमेशा 150 के नीचे रहता है, ट्राइग्लिसराइड 80-90 के नीचे रहता है और एचडीएल मेरा 50 के ऊपर रहता है, 50-55-56। तो मेरा ट्रेजमेंट जो ठीक, फिर मेरा 2017-18 की बात, 17 में मेरी आंख का चश्मा था, मेरा 2000 इस पे नंबर 3.5 था दूर का और इसमें 3.25 था दूर का, नजदीक का 1.5-1.25 था, सिलिंडिक रहे दोनों आंखों में 3 के आसपास थी, बिना चश्मे कुछ दिखाई देता नहीं था। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती, पसीना आता था, काला काला यहां से हो जाता दोनों तरफ से। तो मैंने ऐसे ही, मैंने कोई चश्मा उतारने के लिए नहीं किया, एक दिन मुरली मैंने परमात्मा के मां-बाप के सुने कि किसी के किसका दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, किसी का अवगुण नहीं देखना चाहिए, हंस जो होते हैं ना उनको सिर्फ मोती नजर आते हैं और जो बगले होते हैं ना बगला वो भी सफेद होता है कि तो उसको सिर्फ कीड़े नजर आते हैं। तो मैंने कहा मैं तो भगवान का बच्चा हंस हूं ना, भोली हंस हूं, तो मेरे को तो सब किसी के अवगुण नहीं देखना, मैं पहले लोगों के अवगुण देख लेता था, अवगुण में इसमें खराबी है खराबी मुझे दिखाई देता था। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे अभ्यास मैंने शुरू किया ये वाला, और मुझे याद है कि 6 महीने के भी नहीं किया हुआ अभी, तो मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया चश्मा लगाने से। तो मैंने फिर देखा, मैंने डॉक्टर के मैं गया आंखें चेक कराने के लिए, तो चश्मा उतार के उसने मेरी आंखें चेक की तो कहते डॉक्टर गुप्ता आपका तो नंबर ही नहीं है अभी, तो ये 2018 की बात है, अभी 6 साल हो गए, 17 की बात है, 17-18 जनवरी में मेरा बर्थडे था उसने मैं चश्मा उतार दिया था, 17 में था। तो मतलब आज कितने 6 साल हो गए मुझे, 6 साल ना दूर का है नजदीक का, सब कुछ देख सकता हूँ, आई कैन सी एवरीथिंग, ना नजदीक का भी नहीं दूर का भी नहीं। दैट इज हाउ टू हील योर सेल्फ, राइट। तो आप भी हील करना चाहते हैं अपने आप को, नहीं चाहते हैं? ये काम नहीं कर रहा, ये ऑन किया है नहीं किया? अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, और दिल वाले बैठे ना यहाँ, जीपी सोनी जी बैठे ना, संजय भाई, संजीव और सचिन भी बैठा हुआ ना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, इन्हें मेरे को। ओके, सो हीलिंग द हार्ट, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड अ 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हीलिंग द हार्ट, है ना, फॉर लाइफ, 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर। मॉडर्न हेल्थ केयर इज 1-डायमेंशनल, इट एड्रेसेस ओनली द बॉडी, व्हाइल वी हियर 3-डायमेंशनल मीन्स एड्रेसिंग द 3 aspects ऑफ ह्यूमन बींग, दैट इज स्पिरिचुअल aspect, स्पिरिचुअल केयर, मेंटल aspect, मेंटल केयर एंड द फिजिकल केयर, बॉडी केयर, राइट। ऑल द 3 aspects आर इंटेग्रेटेड for healthy heart, happy mind and healthy body, all the 3 aspects. And this is our hospital in Mount Abu where I joined in 95, and this is Global Hospital Trauma Center here in just about 1 kilometer from away from here. And you see this, at present we have, you know, about 6.2 million people suffering from heart disease, that is 2015. For every one heart patient there are two patients who do not, they are silent patients, right? For at least you have about 15 to 20 crore people suffering from heart disease in India, right? And in 2015, 2.9 million, that's 29 lakh log mare the, heart attack or stroke se. Out of which, 15 million were below the age of 50 years. Or 60% of patients, 37 million patients were below the age of 50 years. This is a disease of young people, right? And main aapko kuch fact, केस स्टडीज बता देता हूं। आप देखिए ये पेशेंट के, देखिए इसके 2007 में एंजियोप्लास्टी हुई, 2010 में एंजियोप्लास्टी हुई, दोबारा से बंद हो गई, दो स्टेंट लगे, फिर 2014 में इसको बाईपास हो गया, फिर देखिए उसका बाईपास 2-3 महीने में बंद हो गया, फिर तकलीफ हुई, फिर वो यूएस में गया, यूएस में जाके उसने अपना एंजियोग्राफी कराई, सारे ग्राफ्ट बंद हो गए थे, वो ग्राफ्ट की बैलून एंजियोप्लास्टी हुई और फिर 4 महीने के बाद वापस हमारे पास आया, फिर उसको तकलीफ चल नहीं पा रहा था, 50 मीटर से नहीं चल पाता था। What happens? तीनों ग्राफ्ट, चारों ग्राफ्ट बंद हो गए, can you see there? आप देख लीजिए चारों ग्राफ्ट बंद हो गए, इसमें आप तो स्क्रीन पे अपने आप दिखा था, स्टेंट्स बंद हो गए। फिर देखिए एक पेशेंट और है, वो तो उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज थी, ओबीज था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, स्मोकिंग करता था। दिस पेशेंट वॉज इसे ये यंग, ये भी उसी उम्र का है, हाइपरटेंसिव नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं, डायबिटीज नहीं, स्मोकिंग नहीं है, एकदम नॉर्मल वेट है और वेजिटेरियन है, डेली एक्सरसाइज करता है, आरएसएस का वर्कर है, पतला दुबला है। उसको प्रॉब्लम हुई 2013 में एंजियोप्लास्टी हुई, 2014 में बाईपास हुआ, 3 महीने के बाद वापस तकलीफ हो गई, फिर उसको दोबारा से बाईपास कराना पड़ा एक साल के बाद, और फिर उसके बाद दो महीने बाद वापस तकलीफ हुई, फिर हमारे पास आया और बिल्कुल तब से बिल्कुल ठीक है। फिर भारत में क्या प्रॉब्लम है कि 54% लोगों को डिफ्यूज डिजीज है। देखना इसमें देखिए आप, लंबे लंबे ब्लॉक हैं विच इज नॉट उनके एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकती। तो हम ऐसे पेशेंट को ज्यादा लेते हैं जिनके एंजियोप्लास्टी बाईपास डिफ्यूज लंबे ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी इंटरवेंशन हो ही नहीं सकती है। ऐसे पेशेंट जिनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी फेल हो चुकी है, जैसे मैंने पहला केस बताया, ऐसे पेशेंट लेते हैं जिनकी बॉर्डर लाइन डिजीज है, ऐसे भी लेते हैं, या जो इंटेंशनली जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के उनको हम लेते हैं, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। राइट, ये देखिए इस पेशेंट के अभी तक 13 स्टेंट लग चुके हैं, एक बाईपास हो चुका है, ये डायरेक्टर एनजीओ की है ना, तो भी चल नहीं पाती थी। एक और देख लीजिए, इसके देखिए सारे ग्राफ्ट बंद हो चुके हैं और स्टेंट भी बंद हो चुके हैं। ये दूसरा पेशेंट देखिए, इसके भी इसके 7 स्टेंट लग चुके हैं। ऐसे मेरे पास हैं पेशेंट जिनके 13-13 दो बाईपास हो चुके हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, फिर भी वो ठीक नहीं थे, फिर यहाँ पर प्रोग्राम में आए तो ठीक हो गए। तो अब राजू श्रीवास्तव 10वां स्टैंड था है ना, जब मेरे पास 2007 में मुझे मिलने आया था तब वो 6 में 7 में मिलने आया था बॉम्बे में, तब भी उसके 5 ब्लॉक थे। तो कहते मेरे पास टाइम नहीं है कैट प्रोग्राम अटेंड करने का, CAD प्रोजेक्ट का। तो उसने एंजियोप्लास्टी कराई, फिर कराता रहा और एक दिन जिम में चला गया है ना। तो जिम में जाना इज नो आंसर है ना। देखिए ये पेशेंट जिसके भी 7 स्टैंड लगे, तो वट एवर वी आर डूइंग एंजियोप्लास्टी बाईपास जो भी कर रहे हैं, दिस इज पैलिएटिव, इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है? जीन्स। रूट कॉज क्या है? मेंटल स्ट्रेस, डाइट, रॉन्ग एक्सरसाइज, रॉन्ग स्लीप, टबैको है ना। ये वन डायमेंशनल हेल्थ केयर है, इट एड्रेस ओनली द बॉडी। हम जो कर रहे हैं ना ओनली वन डायमेंशनल। और CAD साइकोसोमेटिक डिजीज। और इसमें देखिए आप, ये US का एक पेशेंट, इसके देखिए मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, इट इज नॉट ऑपरेबल, वहां देखिए। राइट, सो डिस्पाइट द कॉस्ट एंजियोप्लास्टीज एंड स्टेंट्स डू नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ, डू नॉट प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। बाईपास से भी लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं होती है। तो हम क्या करें? जबकि आप लाइफस्टाइल बदलें तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमारे जो दिल वाले हैं उनकी सबके साथ सारी बीमारियां ठीक हो, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। कितने सारे पेशेंट की डायबिटीज जिनकी था HbA1c 12-13 रहता था, शुगर 400-500 रहती थी, आज उनको डायबिटीज है ही नहीं, HbA1c 6 से नीचे रहता है, ब्लड प्रेशर की थी 4-4, 5-5 गोलियां, आज गोलियां ही नहीं, आधी गोली से भी काम चलता है। लोगों का अस्थमा खत्म हो गया, लोगों का प्रोस्टेट कैंसर खत्म हो गया, लोगों का GERD खत्म हो गया, इवन लोगों का प्रोस्टेट आर्थराइटिस नी जॉइंट था वो ठीक हो गया, स्किन की प्रॉब्लम सोरिसिस ठीक हो गई। मतलब यू कैन एड्रेस ईच एंड एवरी डिजीज। कई हमारे पास मोटे मोटे लोग थे, सुसाइड करने की टेंडेंसी थी, एक 140 किलो का था, वो बार बार सुसाइड की कोशिश करता था है ना। उसको 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था, क्योंकि उसको डर लगता था मैं मर जाऊंगा, तो हमेशा ऑक्सीजन की उसकी, तो वो मोटा था इतना, तो जिसने पंखा लगाया तो पंखे पे, फांसी लगाई तो पंखा नीचे आ गया, पेड़ पे लगाया तो पेड़ की डाली नीचे आ गई। तो 3 बार जब यहाँ पर आया तो उसके बाद फिर ठीक हो गया। तो मतलब बेसिकली यू कैन एड्रेस ईच एंड एवरी डिजीज है ना। तो ये देखिए, ये मैं तो विदेश में कैसे है वो छोड़ देते हैं। अब इस पर नोबल प्राइज मिला था मेडिसिन में 2009 में हेल्दी एजिंग पर। इन्होंने बताया कि मेडिटेशन, इफ यू डू मेडिटेशन इन द प्रॉपर वे, प्रॉपर डाइट, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट एंड लाइफ स्टाइल चेंज, दैट मीन्स एड्रेसिंग दी फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक, सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, हर चीज का एक टाइम है हमारी क्लॉक में, फॉलो दैट क्लॉक। हम वो क्लॉक फॉलो नहीं करते, हम एक प्रेशर बेस्ड लाइफ स्टाइल जीते हैं। प्रेशर फ्री लाइफ स्टाइल नहीं है हमारा। मैं काम से घर में रात में 9 बजे आता हूँ, 10 बजे डिनर करता हूँ, 11 बजे डिनर करता हूँ, 12 बजे सोने जाता हूँ, 1 बजे सोने जाता हूँ। दैट इज अ प्रेशर बेस्ड लाइफ स्टाइल, दैट इज द कल्प्रेट फॉर ऑल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। हमारा रियल कॉज क्या है? वो हमारा रियल कॉज है प्रेशर बेस्ड लाइफ स्टाइल। हमें प्रेशर फ्री लाइफ स्टाइल जीना है, अंदर की घड़ी के अनुसार चलना है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, उसमें सोने का टाइम, उठने का टाइम, 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करो, प्लानिंग करो, उसके बाद क्लियर वंस होती है, सारी विजन मुझे सुबह सुबह उसके बाद अमृत वेला मेडिटेशन के बाद हुई, वो आप करो। राइट, तो इसमें देखो आप सारे जीन्स को परिवर्तन, जीन एक्सप्रेशन ठीक कर सकते हैं, वो जो आपके जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, और डिजीज जो प्रोटेक्टिव जीन्स हैं उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। राइट, ये मैं आपको मॉडल, ये तो हमने जो डिफेंस DRDO ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू और DRDO समेत के कोलाबोरेशन से रिसर्च की, ये जनवरी 95 में शुरू हुआ, मतलब हमने जो विजन हुई थी मॉर्निंग में, मार्च अप्रैल में इसको IMA की मीटिंग में डिस्कस किया गया था, फिर डॉक्टर कलाम साहब से मीटिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया गया, और फरवरी 98 में शुरू हुआ। अभी 25 साल हमने इस साल पूरे किए इस प्रोग्राम के ना, और आज तक हमने 10,402 पेशेंट अभी तक हमने इसमें एड्रेस किए हैं, एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स, और सभी पेशेंट्स के बीमारी कैसे ठीक होती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ, कितना अडेयर करते हैं। 100% क्लासिफाइड ब्लॉक भी कैसे खुल जाते हैं। और ये प्रोग्राम हमारी रिसर्च हमारी पब्लिश हुई और 2011 में पब्लिश हुई, 2013 में हमको बताया गया बायोमेड लिप से, एक ऑफिशियल बॉडी है, कि बताया गया कि आपकी कार्डियोलॉजी में जो रिसर्च है टॉप 20 रिसर्चेज में से नंबर वन है, मोस्ट साइटेड मोस्ट विजिटेड बाई पीपल पब्लिक एंड रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब हमारी ये जो है भारत की स्टडी और टॉप 20 में नंबर वन रही और फिर लगातार नंबर वन रही 2 साल 4 महीना, नवंबर 2000 जुलाई 2013 से नवंबर 2015 तक लगातार, इतना लंबा स्टडी कोई भी भारत की मैं समझता हूँ कोई इतनी शायद नहीं रही होगी, नंबर वन है ना, मोस्ट साइटेड मोस्ट विजिटेड बाई। फिर इसको हमारी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन साइंटिफिक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन के ऊपर एक साइंटिफिक पेपर निकाला, उन्होंने स्टेटमेंट निकाला था 17 में, तो उसमें इस स्टडी को रिसर्च डी नॉर्निश और ये स्टडी को डॉक्यूमेंट किया गया कि इससे ये फायदा, मतलब ये दिस इज गुड फॉर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज, सबके लिए अच्छी है। तो ये 25 ईयर्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है और अभी हमने जो है अभी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमने डॉक्टर मोदी जी ने अभी इसका इनॉग्रेशन किया था और उसके साथ ये हम लोग आरोग्यम भी करके ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज के लिए और हार्ट डिजीज के लिए एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो उसका भी हम मैं समझता हूँ 2 साल में वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ, ये हार्ट डिजीज आप देखिए कोरोनरी आर्टरीज कैसी होती हैं, कैसे ब्लॉक होती हैं, ओपन आर्टरीज कैसी होती हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, सारी ये बातें छोड़ देता हूँ। ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट है, आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल में पब्लिश किया, ये अंडर पब्लिकेशन है, इसको जापान भेजा हुआ है तो मे बी जल्दी पब्लिश हो जाएगा। ये रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी है और इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे, इसमें हमने सब कुछ वही सेम किया जो हर पेशेंट के लिए किया गया था और इसमें 80% पेशेंट हमारे डीवीडी और ट्रिपल वेसल डिजीज के थे और इसको बकायदा इंडिपेंडेंट लोगों ने एनालाइज किया, डॉक्टर कलाम साहब ने उनको डिप्यूट किया था, डॉक्टर कलाम साहब 5 बार इसको देखने के लिए आए, लोगों से मिलने के लिए आए, पर्सनली ही इज टू इंटरेक्ट विद पीपल, और एक एंजियोग्राफी भी हमने इंडिपेंडेंट पैनल ने CSI ने बनाया था, एक पैनल उन लोगों ने इसको एनालाइज किया था। और ये मैं क्लिनिकल पैरामीटर छोड़ देता हूँ टाइम नहीं, लिपिड प्रोफाइल भी गुड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, HDL बढ़ा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, ट्राइग्लिसराइड कम हुआ और 93% पेशेंट्स को ओपन देयर ब्लॉक्स। आप उस थोड़े से एंजियोग्राम देख लीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज है ना, तो ताकि वो लोग स्लाइड पे दिखाएं, ऑफ कर दीजिए लाइट, देखिए 80% ब्लॉक है RCA में, खुल गया, देखिए ये देखिए एक इतना लंबा ब्लॉक है, लॉन्ग सेगमेंट डिजीज है, RCA में खुल गई है पूरी की पूरी है ना, देखिए 100% इसमें 50 कैल्सिफाइड ब्लॉक थे हमारी स्टडी में, 464 लीजन थे उसके, हमने उसको कंसिडर नहीं किया था पर टू अवर सरप्राइज 29 लोगों के लीजन खुल गए, 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक भी खुले, आप देखिए दिस इज वन ऑफ देम, ये भी 100 वन ऑफ देम है ना, ये देखिए मल्टीपल ब्लॉक सारे खुले और देखिए 80 और 90% ब्लॉक खुला। इस पेशेंट को इसके 2 बार MI हुआ था, इसको हार्ट अटैक आया था, इजेक्शन फ्रैक्शन 30% आ गई थी इसकी, 50% इसकी कितनी हो गई 45% हो गई आफ्टर 1 ईयर, ये देखिए 80% ब्लॉक था खुल गया, फिर इसकी EF 20% थी उसकी फिर 50% हो गई, ये देखिए ये 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक खुला। कंट्रोल ग्रुप में ब्लॉक नहीं खुले, हमने क्या किया, हमने DIPR से भी कोलैबोरेशन किया था, हर पेशेंट का हम साइकोलॉजिकल लाइट ऑन कर, अच्छा खुले लाइट बंद ही रहे, हर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं Day 1 पर, बेसलाइन 7th day पे करते हैं, 3 months पे करते हैं, 6 months पे करते हैं एंड 6 महीने 1 साल पे उनको दोबारा एंजियोग्राफी कराते हैं 1 साल के बाद, तो कौन सा ब्लॉक खुलता है हमें पता लगता है और कितना उन्होंने चेंज किया साइकोलॉजिकल डाटा में। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इतना अनुभव हो गया है कि एंजियोग्राफी देखिए हमको समझ में आता है कि इसके थॉट पैटर्न कैसे हैं, इसके रिलेशनशिप कैसी है, ये क्या सोचता है, ये क्या सोचती है, संबंध कैसे हैं, पास्ट कैसा रहा है, सब कुछ उसका एंजियोग्राफी देख के उसका जैसे उसका चेहरा दिखाई देता है ना मिरर में, उस पेशेंट का मिरर उसमें उस एंजियोग्राफी में दिखाई दे जाता है, उनका बिहेवियर चलने का ढंग भी उसमें नजर आ जाता है। जब पेशेंट आते हैं ना, मैं तो सिर्फ एंजियोग्राफी देखता हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ, तो अभी इतना हम लोग इस बात को अभी तक 25 साल में ये हम एनालाइज कर पाए। और देखिए ATA ब्लॉक सारे ब्लॉक मतलब हर ब्लॉक के लिए थॉट पैटर्न्स हैं, अगर आप थॉट पैटर्न्स को बदल दें मेडिटेशन से, उनका टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, जो बिहेवियर गलत हैं उनको आप चेंज कर दें, हम स्पेसिफिकली उनको बताते हैं हाउ टू चेंज दैट थ्रू मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, तो बदल लेते हैं, जितना बदल पाते हैं उनका उतना ब्लॉक खुल जाता है। तो ये फिर देखिए एक पेशेंट का और देखिए एंजियोग्राम, 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक है, खुल गया है, ये देखिए देख रहे हैं आप, रिपीट एंजियोग्राम में देखिए खुल गया है ना, पूरा का पूरा आर्टरी खुल गई, कैल्सिफाइड ब्लॉक खुल गया। तो बेसिक क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस सारे उनको चेंज हो जाते हैं, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर सब देख रहे हैं आप, बिहेवियरल फैक्टर्स, डाइट, एक्सरसाइज का एडहेरेंस बदल जाता है, ईईजी बदल जाता है। जो मैंने बताया ना, बीटा रिदम आई ओपन के साथ होती है, अल्फा रिदम विद क्लोज्ड आईज जिसे पीसफुल रिदम कहते हैं, थीटा को लवफुल रिदम कहते हैं व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, और डेल्टा जब सो रहे हैं ना तो आप वो हैप्पी और ब्लिसफुल रिदम होती है। आप देखिए एक हफ्ते के बाद कितनी चेंज हो गई, देखना नीचे वाली स्लाइड में, अल्फा रिदम प्रीडोमिनेंट हो गई, बीटा कम हो गई, थीटा बढ़ गई, डेल्टा भी एक हफ्ते में बढ़ गई। वन वीक और राजयोग मेडिटेशन कैन चेंज योर ईईजी परमानेंटली, राइट। ये देखिए, ये आईज ओपन के साथ ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस होता है। अभी आप ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, फिर ईईजी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है हमारे अंदर, टाइप ए बिहेवियर होता है ना, और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कम होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होती है। तो आप यू कैन फाइंड आउट बाई दिस थिंग, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमने की थी। देखिए जब पेशेंट हमारे पास आए तो फर्स्ट डे में उनकी लाल लाइन देख रहे हैं, लाल लो फ्रीक्वेंसी पावर बहुत ज्यादा है और ग्रीन वाली बहुत कम है, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी पावर, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी। डे सेवन पे कितना चेंज हो गया है और एक साल पे पूरी हार्मनी हो गई है। सो वी अवर लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, चैलेंज हमेशा कभी कम नहीं होने वाले, बढ़ने वाले एज यू एज और भी बढ़ने वाले हैं। व्हाट वी डू इज वी फेस चैलेंजेस विद रिलैक्स्ड माइंड, दैट इज व्हाट राजयोगा टीचेस अस, राइट। तो ये हमें प्रैक्टिकल एविडेंस है। फिर हमने एपिनेफ्रिन लेवल, एड्रेनल लेवल, नॉर्डिनल लेवल भी किए, डे वन डे सेवन। आप देख कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पर डे जिन्होंने राजयोगा मेडिटेशन किया उनके अंदर कितना सिग्निफिकेंट चेंज डे सेवन में आ जाता है, फिर फर्दर कंटिन्यू रहता है एक साल दो साल पर। और फिर ये सब डीआरडीओ ने रिसर्च किए, प्लाज्मा सीरोटोनिन बीटा एंडोर्फिन भी बढ़ जाते हैं, डे सेवन पे भी बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन इज लाइक मॉर्फिन ना, अंदर की मॉर्फिन है ना, जो आपकी वैसे ठीक हो जाती है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इवन कॉर्टिसोल लेवल, सुबह से उठने से जब आप उठते हैं तो वहां से आधे घंटे बाद आपका कॉर्टिसोल सर्च शुरू हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड से। डिपेंड्स ऑन योर टीम, आपके थॉट्स कैसे, इमोशंस कैसे, एटीट्यूड्स क्या है, मेमोरीज क्या है, 8 बजे तक जो रखेंगे ना उसके अनुसार वो कॉर्टिसोल निकलेगा। अगर आपने नेगेटिव किया, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, नेगेटिव स्मृतियों को इमर्ज किया, तो नेगेटिव क्या होगा, कॉर्टिसोल ज्यादा निकल जाएगा। तो क्या होगा, सारा दिन आपको आप जल्दी चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एफिशिएंसी कम हो जाती है, हर बात में लड़ते रहते हैं, घर में भी ऑफिस में भी। और इसकी बजाय अगर आप सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करें, आनंद को अनुभव करें, परमात्मा से मिल जाएं, वो ट्रिगर करता है आपकी पॉजिटिव टीम को। और फिर आप परमात्मा के महावाक्य मुरली को मन चिंतन करते हैं सुबह से 5 बजे से और 8 बजे तक, 7 से 8 मुरली सुनते हैं, तो वो टाइम सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल सर्ज होगा। मुरली 100% पॉजिटिव टीम, तो कॉर्टिसोल हार्मोनियस हो गया, तो सारा दिन पीसफुल, लवफुल, हैप्पी और आपकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। आप करके देखना, 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना आधा घंटा और फिर मुरली पढ़ लेना और उसके बाद सेंटर पे जाकर 7 से 8 मुरली सुनना, तो आप देखेंगे आपका मैजिक हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेंटर है ब्रह्मा कुमारी सेंटर है आपके, जहां भी आप रहते हैं, मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है कैसे आपकी लाइफ एफिशिएंसी बढ़ती है, एंड दैट इज द वे टू हील योर। तो वो आप करते हैं, तो ये हमने इसको प्रूव करके दिखाया ना कैसे होता है ना। इसी तरह से आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्रॉब्लम क्या है हमारी सबकी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी प्रॉब्लम है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी ठीक कैसे होगी, इस तरह से ठीक होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने के लिए हमको क्या करना है कि एक हफ्ते में कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। एक हफ्ते में इनकी इंसुलिन ठीक हो, मतलब लोगों की इंसुलिन हट जाती है, मोस्ट ऑफ द लोगों की, और उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अपनी इंसुलिन ही काफी है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और डिसलिपिडेमिया खत्म हो जाता है, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। हमारा एक पेशेंट ने, उसका वजन था 102 किलो, अब उसका 52 किलो वजन है, एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। तो कैसे वजन कम होता है, अपने आप ही कम होता है, हम कम नहीं करते। हमारा तो फॉर्मूला क्या है, ईट मोर वे लेस, 70% फाइबर, 30% सीरियल्स एंड पल्सेस, वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को हील करते हैं। तो मैं समझता हूं टाइम मेरा पूरा हो गया, मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो मैंने ऑडिट कहा, कनेक्शन विद द ट्रूथ है ना, ये जब कोई करना है, और ये ह्यूमन बींग का मैंने बताया आपको, क्या चीज, मुरली पेपर सेंटर पे जाना होगा आपको, और मोबाइल मुरली ऐप है, उस पर मुरली आपको मोबाइल पे आती है, आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, है ना, ठीक है, और सेंटर पे जाना। तो हमें ये सीखना है कि इट इज एक ही बंदा है जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है, सिर्फ आप है। हील दाई सेल्फ। डॉक्टर गाइड कर सकता है, पेशेंट आपके रिलेटिव आपकी मदद कर सकते हैं, भगवान एक का हजार गुना मदद करता है। और हेल्दी मीन स्वस्थ, स्वामी स्वस्थ आत्मा आत्मन स्थित सोल कॉन्शियस। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अपनी अंदर वाली घड़ी के अनुसार चलना है, दुनिया की इस घड़ी को छोड़ देना है, ठीक है, मोबाइल को छोड़ना है। तो ये एनाटॉमी ऑफ सोल, फिजियोलॉजी ऑफ सोल, आत्मा के साथ एनर्जी है, कैसे आत्मा मन के माध्यम से बॉडी को नरिश कर रही है। उसके लिए 4 बजे उठो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके और फिर आप 8 बजे चुप रहो, मुरली पढ़ो, और बॉडी के लिए क्या करो, प्रॉपर फूड, शुद्ध सात्विक भोजन, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, पराठा पकौड़ा समोसा नहीं, नॉनवेज नहीं, फ्राइड नहीं, तला हुआ नहीं, वो छोड़ो, क्योंकि वो अंदर जमने वाला है, खराब करने वाला है, रिसेप्टर्स खराब होने वाले हैं। और सैर, शुद्ध सूर्योदय के साथ 45 मिनट सैर कर लो, बातें करते हुए नहीं, शांति से मेडिटेटिव वॉक, और सोने के पहले अपने आप को वेंटिलेशन कर लो, एक लेटर लिख दो भगवान के नाम और मेडिटेशन करके सो जाओ, तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी आपके आसपास जमा हो जाएगी, आपकी बॉडी के आसपास, ये आपका ऑरा बन जाएगा, कवच बन जाएगा, शील्ड बन जाएगी, जो आपको बचाएगी, हील भी करेगी, ये हीलिंग एनर्जी बन जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को ठीक करेंगे, और ये प्रोग्राम इस तरह से हम करते हैं। ये हम दिल वाले जो आते हैं सारे भारत से और विश्व के भी, विदेशों से भी आते हैं, ऐसे हम करते हैं। और हम 5वें दिन डांस भी करते हैं, 1 घंटा रोज, मतलब 1 घंटा डांस करते हैं, जो चल भी नहीं सकते वो डांस करते हैं फिर। और हमने अभी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया था, कोविड से टूट गया है, और अभी हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं या फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, और सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन प्रोग्राम यहाँ करते हैं, जो मैंने आपको बताया, सारे भारत में है, सारे विश्व में। इसका टेक होम मैसेज यही है, स्पिरिचुअल केयर, जो भी काम करो बी नेचुरल, बी सोल कॉन्शियस, नॉट बॉडी और सोल कॉन्शियस। इसके लिए 4 से 4:45 उठो, आधा घंटा मेडिटेशन करो, आनंद का अनुभव करो, 8 बजे तक हैव पॉजिटिविटी, कॉन्शियस सोच को हार्मोनाइज करो, तो आपकी हार्मोनाइज टीम हो जाएगी। और फिर आप क्या करो, ईट नेचुरल, खाली क्या खाना आवश्यक नहीं, क्या खाना है, कैसे खाना और कब खाना है, 8 से 9 ब्रेकफास्ट, लंच 1 से 2, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में कर लो, लेट मत करो। उसके बाद 3 घंटे पहले खाने के पहले, और सुबह 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक कर लो, 30 मिनट्स शाम को इवनिंग स्ट्रोल कर लो बिफोर सनसेट, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, हैव प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन खाओ, बाईपास एंजियोप्लास्टी भी कराओ, रिमेंबर इट इज नॉट द एंड, इट इज ओनली पेलिएशन। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, यू वॉन्ट टू ओपन योर ब्लॉकेजेस, यू वॉन्ट टू हैव ब्लड प्रेशर फ्री लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ, ओबेसिटी फ्री लाइफ, और एंजाइटी फ्री लाइफ, डिप्रेशन फ्री लाइफ, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, देन प्रैक्टिस वॉट, 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल। ये प्रोग्राम है, इसको फॉलो करें, सही ढंग से फॉलो करेंगे, और इसकी हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं हर साल, और आप अटेंड भी कर सकते हैं, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और ट्रेनिंग भी लेने आ सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे जीपी सोनी जी 1-2 मिनट सिर्फ ना अनुभव सुना देंगे, सोनी जी आप 2 मिनट अनुभव सुना, हाँ मुझे पता है 1 मिनट 2 मिनट सर अनुभव सुना दे, सुनाइए, हाँ मुझे पता है, 2 मिनट सिर्फ सुनाइए।
ओम शांति। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, इस शरीर का नाम है गोविंद प्रसाद सोनी, इस समय मेरी उम्र 69 है, बड़ोदरा में रहता हूँ। 2002 फर्स्ट में मुझे चेस्ट पेन हुआ, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, टीएमटी करवाया और तो वो हार्ट डिजीज साबित कर दिया कि आपको हार्ट डिजीज है, उन्होंने बोला एंजियोग्राम करना, एंजियोग्राम किए तो तीनों आर्टरी जो मेन आर्टरी है RCA, LAD, LCX 95-99% ब्लॉकेज, तीनों आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी टोटल ऑक्लूडेड था। मेरी बाईपास सर्जरी हो गई 2002 में, और 2004 में मुझे फिर से तकलीफ हो गई, और जब फिर से एंजियोग्राम किया गया तो फिर से ब्लॉकेज, जहां जो आर्टरी जोड़ी गई थी उसमें फिर से ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने बोला भी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, तो मैं बोला ठीक है कर दीजिए, तो 2 एंजियोप्लास्टी हो गई मेरी उस समय। अब जब ये हो गया तो मैं अपने आप को सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या किया जो मुझे एंजियोप्लास्टी भी हो गई और बाईपास सर्जरी भी हो गई, लेकिन आराम नहीं मिला। लोगों ने क्या बोला कि आप जो अदरक का रस और लहसुन का रस एप्पल साइडर ये सब मिला के पीजिए, वो पिया कोई आराम नहीं मिला। फिर को मैंने किसी बगल वाला मेरा था, उन्होंने बोला कि आप गौमूत्र पीजिए, मैंने गौमूत्र पिया, करीब 2-3 महीने तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं इतना परेशान हो गया, अब मेरी डाइट देखिए, मैं प्योर वेजिटेरियन, नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर, इसके बावजूद भी मुझे ये सब परेशानी हो गई। अब ठीक है, तो हमने बोला अब क्या करना है, मैं बहुत परेशान, बच्चे छोटे छोटे थे, मैं रिटायर आर्मी से सूबेदार हूँ, तो उस समय इतना चिंतित था, तो और मेडिकल सेंटर में सर्विस देता था। अब हुआ, एक भाई आया, बोला कि उसने कि आपका, मैं तो आपके पास तकलीफ के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है कि आपका माइंड सेट नहीं है। मैं बोला मेरे को ऐसी ही समस्या हो गई है, बाईपास हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, अब फिर तकलीफ, अब मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता है? तो उन्होंने बोला एक बार गुप्ता साहब के पास जाइए आप। तो उनके पास में आया तो बोला ठीक है। अब मैं सोचा चलो
जाते बनारस भाई, तो
एक बार गया, फिर साहब के पास में आया, साहब ने बोला 7 दिन का कोर्स कीजिए, अब हमारा 7 दिन की ट्रेनिंग चलती है। उस 7 दिन की ट्रेनिंग किया और आज मैं 18 साल हो गए, मीन्स 2004 में मेरी दोन जो प्लास्टिक हुई थी और अभी चल रहा है 23, 18 साल हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरा इको, एस्ट्रेस इको, TMT सब निगेटिव फॉर हर्ट डिजीज। और आज लेकिन जो परमात्मा ने बतलाए उस अनुसार मैं चलता हूँ, जो गुप्ता साहब जो 7 दिन की सिखलाई दिया उस पूरा सिखलाई करके मैं अभी ठीक हूँ। और आज मैं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डेली चल देता हूँ, कोई भी, इस समय मेरी उम्र हो रही है 70 ईयर्स।
आई रिक्वेस्ट बनारस भाई टू,
मैं कोई भी हर काम करने को तैयार हूँ। बाबा ने सिखाया है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन उसके पीछे दिव्य गुणों की धारणा चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, सत्संग चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई आपको बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति।
थैंक्स टू डॉक्टर सतीश गुप्ता फॉर सच एनलाइटिंग सेशन एंड डेफिनेटली। हाँ,